वोले सोयिंका पर प्रारंभिक नरेशन ऑडियो एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में, आज हम एक ऐसे लेखक और विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी आवाज़ सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में गूंजती है, जिनकी कलम ने अन्याय के खिलाफ सचमुच एक मशाल जलाई है। मैं बात कर रही हूँ वोले सोयिंका की।
जी हाँ,
नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार, कवि, उपन्यासकार और हाँ, एक बेहद निडर राजनीतिक कार्यकर्ता भी।
हाँ, और सोयिंका इसलिए असाधारण है, मतलब खास है, क्योंकि उन्होंने कला को महज क्या कहते हैं, मनोरंजन या कोई सजावट की चीज नहीं माना। उनके लिए तो ये सत्य और न्याय की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हथियार था। उन्होंने अपनी जड़ों को, खासकर योरूबा संस्कृति और उसके मिथकों को, पश्चिमी साहित्यिक तकनीकों के साथ मिलाया और इससे एक ऐसी मौलिक और शक्तिशाली शैली बनाई जो अब देखिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
तो आज का हमारा इरादा यही है कि हम सोयिंका के जीवन सफर को, उनके जो क्रांतिकारी विचार हैं, उनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके असर को, और हाँ, उनकी जो कभी ना मिटने वाली विरासत है, उसे समझने की कोशिश करें।
बिल्कुल,
और हमारी ये बातचीत उन स्रोतों पर आधारित है जो उनके जीवन और काम का काफी गहराई से विश्लेषण करते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं उनके समय से। सोयिंका का जन्म हुआ 1934 में। ये एक ऐसा दौर था जब नाइजीरिया पर ब्रिटिश राज था
जी
और दुनिया में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। मतलब महामंदी का असर था, यूरोप में फासीवाद बढ़ रहा था और उपनिवेशों में आज़ादी की लहरें उठ रही थीं। इस माहौल का उनके शुरुआती जीवन पर क्या असर पड़ा होगा?
बिल्कुल, ये माहौल बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, उनका साहित्यिक उभार हुआ 1950 और 60 के दशक में।
हाँ,
ये वो समय था जब अफ्रीकी साहित्य का एक तरह से नवजागरण हो रहा था
हाँ,
और दुनिया भर में उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था।
हाँ
चिनुआ अचेबे, नगोगी वाथ्योंगो जैसे बड़े लेखक सामने आ रहे थे।
सही।
उस समय पैन अफ्रीकनिज्म यानी सभी अफ्रीकी देशों की एकता का विचार जोरों पर था
हाँ
और नेग्रिट्यूड जैसा एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था जो अफ्रीकी और अश्वेत पहचान के गौरव पर जोर देता था। हालांकि ये बात भी है कि सोयिंका ने बाद में नेग्रिट्यूड की जो थोड़ी रोमांटिक सोच थी उसकी आलोचना भी की।
नेग्रिट्यूड की आलोचना, ये दिलचस्प बात है। उनकी वो मशहूर टिप्पणी है ना,
हाँ,
एक बाघ अपनी बाघ वृत्ति की घोषणा नहीं करता, वो झपटता है।
अ टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम हिज टाइग्रिट्यूड, ही पाउंसेस।
बिल्कुल सही।
शायद उनका मतलब यही था कि अपनी संस्कृति का ढिंढोरा पीटने से ज्यादा जरूरी है उसे अपने काम में, अपने एक्शन में दिखाना। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका मानना था कि पहचान कर्म से बनती है, सिर्फ घोषणाओं से नहीं। और फिर वैश्विक घटनाएं भी थी, जैसे घाना की आज़ादी 1957 में, फिर नाइजीरिया की अपनी आज़ादी 1960 में। इन सब ने भी उनके लेखन के लिए एक, आप कह सकते हैं, नाटकीय पृष्ठभूमि तैयार की।
और बौद्धिक प्रभाव?
बौद्धिक रूप से देखें तो उन पर सार्त्रे और कामू के अस्तित्ववाद का असर था, सैमुअल बेकेट का एब्सर्ड थिएटर भी। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने इन सबको अपनी योरूबा जड़ों से जोड़ा।
अच्छा, अब उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। अब्युकुट्टा में जन्म हुआ, एक ऐसे घर में जहां पश्चिमी शिक्षा भी थी और योरूबा परंपरा भी साथ साथ चल रही थी।
जी हाँ,
पिता स्कूल प्रिंसिपल थे, ईसाई धर्म अपना चुके थे। माँ एक स्वतंत्र विचारों वाली दुकानदार थीं और महिला अधिकार कार्यकर्ता भी, जिनकी योरूबा संस्कृति में गहरी आस्था थी। ये जो द्वंद्व है, ये उनके काम में कैसे झलकता है?
ये द्वंद्व तो आप कह सकती हैं उसके लेखन का केंद्रीय तत्व है। एक तरफ पश्चिमी शिक्षा, दूसरी तरफ अफ्रीकी ज्ञान। ईसाई धर्म बनाम स्वदेशी आध्यात्मिकता। बचपन में उन्हें योरूबा मिथकों, त्योहारों, रस्मों का सीधा अनुभव मिला, खासकर उनके दादाजी के जरिए, जिन्होंने उन्हें योरूबा देवी देवताओं से मिलवाया, जैसे ओगोन, ये सब जैसे उनके अंदर रच बस गया।
और उनकी शिक्षा, खासकर लीड्स विश्वविद्यालय वाला अनुभव कैसा रहा?
देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज इबादान और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादान में उनकी साहित्यिक नींव तो पड़ी, लेकिन जो असली मोड़ आया वो था 1954 में लीड्स यूनिवर्सिटी, यूके की स्कॉलरशिप।
अच्छा,
वहाँ जी विल्सन माइड जैसे प्रोफेसर थे, उन्होंने उन्हें आधुनिक नाटक की संभावनाओं से परिचित कराया और यहीं पर उन्होंने वो क्रांतिकारी विचार विकसित किया कि कैसे यूरोपीय आधुनिकतावादी तकनीकों को अफ्रीकी, खासकर योरूबा प्रदर्शन परंपराओं, जिसमें संगीत, नृत्य, अनुष्ठान सब शामिल थे, के साथ जोड़ा जा सकता है।
तो मतलब उनके जो मुख्य विचार और योगदान हैं, उनमें ये योरुबा ब्रह्मांड और पश्चिमी तकनीक का मेल ही सबसे अहम माना जाए।
निसंदेह। और ये सिर्फ कोई मिश्रण नहीं था, ये एक मौलिक संश्लेषण था, कुछ एकदम नया बनाना। उन्होंने योरुबा देवता ओगुन को अपने काम का केंद्र बनाया।
ओगुन?
हाँ, ओगुन जो लोहा, युद्ध, रचनात्मकता और विनाश दोनों के देवता हैं। वो उनके लिए कलाकार का प्रतीक बन गए, कलाकार जो पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ता है और नया रचता है। ये सिर्फ मिथक का इस्तेमाल नहीं था, ये दुनिया को समझने का एक पूरा दार्शनिक ढांचा था उनके लिए।
और उनके नाटकों की बनावट में भी ये दिखता है ना, जैसे कोई यथार्थवादी सीन चल रहा हो और अचानक वो किसी रस्म या अनुष्ठान में बदल जाए।
हाँ, ये उनकी एक और बहुत बड़ी देन है। संगीत, नृत्य, मुखौटे, अनुष्ठान, ये सब उनके नाटकों में सिर्फ सजावट के लिए नहीं है।
नहीं है,
वो कहानी और विचार को आगे बढ़ाते हैं, एक तरह का आप कह सकते हैं प्रदर्शन पर आधारित तर्क पेश करते हैं। और इसने दुनिया भर में इंटरकल्चरल थिएटर को बहुत प्रभावित किया, मतलब ऐसा रंगमंच जो अलग अलग संस्कृतियों के तत्वों को मिलाकर कुछ नया बनाता है।
सही। और एक लेखक के तौर पर उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी की भावना थी,
स्वयंका ने हमेशा ये माना कि लेखक जो है वो समाज की अंतरात्मा का प्रहरी होता है। कला को राजनीतिक सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कभी नहीं।
बिल्कुल।
उन्होंने सत्ता पर सवाल उठाने और सच बोलने का नैतिक दायित्व निभाया पूरी जिंदगी, भले ही इसकी कीमत उन्हें जेल जाकर या देश छोड़कर चुकानी पड़ी हो। जैसा उन्होंने अपने जेल संस्मरण द मैन डाइड में लिखा भी है, और ये बहुत मशहूर पंक्ति है, अत्याचार के सामने चुप रहने वाले हर व्यक्ति में मनुष्य मर जाता है।
क्या बात है।
ये उनके जीवन और लेखन का आप कह सकते हैं मूल मंत्र रहा है।
उनकी भाषा भी बहुत खास है, वो अंग्रेजी में लिखते थे लेकिन उसमें योरुबा का रंग कैसे ले आते थे?
उनने अंग्रेजी को योरुबा नुरावरों, कहावतों और सोचने के तरीकों से जैसे सींच दिया। इससे एक ऐसी भाषा बनी जो एक साथ अफ्रीकी भी थी और वैश्विक भी। उन्होंने भाषा को अपनी सांस्कृतिक पहचान व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया।
चलिए अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर आते हैं जिन्होंने इन विचारों को शक्ल दी। सारी रचनाओं पर बात करना तो शायद मुश्किल होगा, पर कुछ खास काम जिन्होंने वाकई बड़ा असर डाला। शुरुआत शायद ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट्स 1960 से करें।
हाँ, ये नाइजीरिया की आज़ादी के अवसर पर लिखा गया था, लेकिन ये कोई सीधा साधा जश्न का नाटक नहीं था।
नहीं था,
बल्कि ये इतिहास के बोझ और भविष्य की चुनौतियों पर एक बहुत जटिल और कह सकते हैं आलोचनात्मक नज़र डालता है। इसने योरुबा मिथकों का इस्तेमाल करके दिखाया कि आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना नहीं होता, बल्कि अतीत की गलतियों से सीखना भी होता है। इस नाटक ने तुरंत स्वयंका को एक ऐसे लेखक के रूप में स्थापित कर दिया जो बेबाक है, जो असुविधाजनक सच बोलने से डरता नहीं है।
फेट द लायन एंड द जूल 1963 है, ये शायद उनकी सबसे ज्यादा खेली जाने वाली कॉमेडी है।
बिल्कुल, ये बहुत लोकप्रिय है। ये परंपरा जिसका प्रतीक है गांव का मुखिया बोरो का, और सतही आधुनिकता जिसका प्रतीक है स्कूल टीचर लकुनले, इनके बीच के संघर्ष को बड़ी चतुराई और हास्य के साथ दिखाता है।
हाँ हाँ।
लेकिन ये सिर्फ मजेदार कहानी नहीं है, ये सांस्कृतिक बदलाव की जो जटिलताएं हैं उन पर एक गहरा व्यंग भी है कि कैसे दोनों ही पक्ष अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, और डेथ इन द किंग्स हॉसमैन 1975, इसे तो अक्सर उनकी सबसे बड़ी नाट्य उपलब्धि माना जाता है।
निश्चित रूप से, ये उनके सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जहां एक औपनिवेशिक प्रशासक एक योरुबा रस्म में दखल दे देता है और उसके बहुत दुखद परिणाम होते हैं। ये नाटक महज औपनिवेशिक हस्तक्षेप की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये योरुबा ब्रह्मांड विज्ञान, कर्तव्य, सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों के टकराव पर एक गहरा काव्यात्मक और दार्शनिक चिंतन है।
इसमें रस्म का क्या महत्व है?
इसमें रस्म केवल कहानी का हिस्सा नहीं है, वो नाटक का ढांचा है, उसकी आत्मा है। ये दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक नासमझी या गलतफहमी त्रासदी को जन्म दे सकती है।
और उनके गद्य लेखन में, खासकर वो जेल संस्मरण द मैन डाइड 1972।
हाँ, वो एक असाधारण किताब है सच में। वो सिर्फ नाइजीरियाई गृह युद्ध के दौरान उनके जो 22 महीने एकांत कारावास में बीते उसका ब्यौरा नहीं है।
नहीं,
बल्कि वो मानवीय गरिमा, अन्याय के खिलाफ बौद्धिक प्रतिरोध और व्यक्तिगत विवेक की शक्ति पर एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। वो दिखाता है कि कैसे लिखना अपने आप में जिंदा रहने और अपनी इंसानियत को बचाने का एक तरीका बन सकता है।
सोयिंका की तुलना अक्सर उनके समकालीन एक और महान नाइजीरियाई लेखक चिनुआ अचेबे से की जाती है। आप दोनों में मुख्य अंतर क्या देखती हैं?
देखिए, दोनों ही महान लेखक हैं। दोनों ने अफ्रीकी अनुभवों को दुनिया के सामने रखा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, उनकी शैली और दृष्टिकोण में फर्क है।
कैसा फर्क?
जहाँ अचेबे का गद्य ज्यादा यथार्थवादी है, सीधी शैली का है, जो सामाजिक और ऐतिहासिक बदलावों को दिखाता है, वहीं सोयिंका का काम ज्यादातर काव्यात्मक है, रूपक प्रधान है, मिथकों से भरा हुआ है और दार्शनिक रूप से ज्यादा सघन, ज्यादा गहरा होता है। उनकी भाषा भी ज्यादा जटिल और प्रयोगधर्मी है। और हाँ, सोयिंका मुख्य रूप से नाटककार के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, जबकि अचेबे उपन्यासकार के रूप में। तो दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन दोनों ने मिलकर अफ्रीकी साहित्य को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
आज अगर हम सोयिंका की विरासत को देखें तो वो क्या है? क्या वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं?
उनकी विरासत तो बहुआयामी है। वो एक महान साहित्यकार हैं, एक साहसी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विचारक भी। उन्होंने अफ्रीकी लेखकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं।
सही,
उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, और जहां तक प्रासंगिकता की बात है तो बिल्कुल बनी हुई है।
कैसे? मतलब आज की दुनिया में उनके विचार क्यों मायने रखते हैं?
देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, तानाशाही का खतरा, सत्य की तलाश, सांस्कृतिक पहचान का संकट, हिंसा का जो चक्र है, ये वो मुद्दे हैं जिनसे सोयिंका जीवन भर जूझते रहे हैं।
हाँ, ये तो आज भी हैं।
ये मुद्दे आज भी दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि एक कलाकार और एक बुद्धिजीवी की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए। सवाल पूछने की भूमिका, सत्ता को चुनौती देने की और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की। उनका काम आज भी हमें जगाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक या कम ज्ञात पहलू क्या हैं? हमने उनके माता पिता के वो दिलचस्प उपनामों का जिक्र किया था।
हाँ, वो वाकई दिलचस्प था। एक और घटना है, 1965 की। पश्चिमी नाइजीरिया में चुनावों में धांधली हुई थी। उसके खिलाफ विरोध करते हुए उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कथित तौर पर एक रेडियो स्टेशन पर बंदूक की नोक पर कब्जा कर लिया।
अरे,
और सरकार समर्थक टेप को हटाकर अपना विरोध वाला टेप चला दिया। हालांकि वो बाद में बरी हो गए, लेकिन ये उनके राजनीतिक साहस और उस नाटकीय अंदाज को दिखाता है।
और वो लंबा एकांत कारावास और टॉयलेट पेपर पर लिखना, ये तो अविश्वसनीय लगता है।
हाँ, नाइजीरिया गृह युद्ध के दौरान 1967 से 69 के बीच उन्हें 22 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में रखा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। उस दौरान जब लिखने की कोई सामग्री नहीं मिली तो उन्होंने सिगरेट के पैकेट और टॉयलेट पेपर के टुकड़ों पर कविताएं और नोट्स लिखे। ये उनकी जो अदम्य रचनात्मक इच्छा शक्ति है, उसका प्रमाण है।
और उन्हें बाद में भी देश छोड़ना पड़ा था।
जी हाँ, 1990 के दशक में जनरल सानियाबाचा का क्रूर सैन्य शासन था नाइजीरिया में। उस दौरान उन्हें कई साल निर्वासन में बिताने पड़े। अबाचा ने तो उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा भी सुना दी थी, लेकिन वो डरे नहीं, विदेश से ही लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहे।
ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि लगभग 90 साल की उम्र में भी वे इतने सक्रिय हैं। और 2021 में उनका नया उपन्यास भी आया।
हाँ, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये समकालीन नाइजीरिया पर एक बहुत तीखा व्यंग है। ये दिखाता है कि उनकी नजर आज भी उतनी ही पैनी है और उनकी आवाज उतनी ही बुलंद।
तो अंत में अगर हमें वोले सोयिंका की कहानी और उनके काम से एक मुख्य बात, एक सबक लेना हो तो वो क्या होगा?
शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि कला सिर्फ सौंदर्य की वस्तु नहीं है, वो जिंदा रहने का, सच बोलने का और हाँ, बदलाव लाने का एक तरीका भी है, एक ताकत है।
सही।
सोयिंका का जीवन दिखाता है कि कैसे अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों से ताकत लेकर भी पूरी मानवता की बात की जा सकती है। उनका जीवन और लेखन हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल और दमनकारी हालातों में भी रचनात्मकता, साहस और मानवीय गरिमा जिंदा रह सकती है। और यही शायद सबसे बड़ी उम्मीद है। उनकी कहानी असल में एक व्यक्ति के नैतिक साहस की कहानी है, जो हमें अपनी आवाज उठाने और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो।
वोले सोयिंका की जटिल, चुनौतीपूर्ण लेकिन उतनी ही प्रेरक दुनिया में ये एक गहरी पड़ताल थी। उम्मीद है श्रोताओं को उनके विचारों और उनके महत्व को समझने में इससे मदद मिली होगी।
समापन नरेशन ऑडियो। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।